आज हम कम्युनिटी यानी समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। कम्युनिटी यानी समुदाय, समुदाय की परिभाषा। हमारी प्राथमिक धारणाओं में से द्वितीय धारणा समुदाय है। आइए पहले कुछ उदाहरणों को लेकर विचार करें। समुदाय शब्द का प्रयोग हम किसी नई बस्ती या एक गांव, एक शहर या एक कबीला यानी ट्राइब अथवा एक राष्ट्र के लिए करते हैं। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के हित में भागीदार न होकर सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। समुदाय का लक्षण है कि उसके भीतर एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सके। किसी व्यापारिक संगठन अथवा गिरजाघर में कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन नहीं बिता सकता, परंतु एक जनजाति अथवा एक नगर के भीतर हम में से कोई भी अपना सारा जीवन बिता सकता है। अतः समुदाय की आधारभूत कसौटी यह है कि मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके भीतर ही मिल जाएं। समुदायों का आत्मनिर्भर होना आवश्यक नहीं। कुछ समुदाय पूर्ण समावेशी और दूसरों से स्वतंत्र होते हैं। आदिवासी लोगों में हमें कभी कभी ऐसे समुदाय मिलते हैं जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होते। उदाहरणार्थ कैलिफोर्निया की यूरोक जनजाति है जो लगभग पूर्ण रूप से पृथक है, किंतु आधुनिक समुदाय बहुत बड़े बड़े होने पर भी बहुत कम आत्मनिर्भर होते हैं। हमारे विशाल आधुनिक समुदायों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि वे आर्थिक और अधिकतर राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम किसी विशाल महानगर में रहते हुए भी एक बहुत छोटे समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि हमारे हित एक छोटे से क्षेत्र के भीतर ही सीमित हो सकते हैं। अथवा हम किसी गांव में रहते हुए भी एक इतने बड़े समुदाय के सदस्य हो सकते हैं जिसका विस्तार हमारी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र तक या उससे भी अधिक फैला रह सकता है। एक सभ्य समुदाय को किसी अधिक बड़े समुदाय से पूर्णतया पृथक कर उसे एक अहाते में बंद नहीं किया जा सकता। भले ही एक राष्ट्र के शासक कैसे भी लोह पर्दे खड़े कर दे, छोटे समुदाय बृहद समुदाय के भीतर ही बसते हैं। जैसे नगर एक प्रदेश के भीतर, प्रदेश राष्ट्र के भीतर और राष्ट्र विश्व समुदाय के भीतर, जिसके विकास की प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। समुदाय के आधार। अतः सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को समुदाय कहते हैं जिसमें सामाजिक सामंजस्य भाव के कुछ अंश विद्यमान हों। समुदाय के दो आधार हैं, स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। पहला, स्थानीय क्षेत्र। एक समुदाय सदा एक प्रादेशिक क्षेत्र में स्थिर रहता है। एक जिप्सी समूह जैसे घुमक्कड़ समुदाय को भी अपनी स्थानीय बस्ती होती है, यद्यपि वह बदलाव करती है। इसके सदस्य प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थान में निवास करते हैं, अधिकांश समय सुनिश्चित रूप से बसे होते हैं और अपनी स्थानीय भूमि की दशाओं से सुदृढ़ सूत्र में बंधे होते हैं। आधुनिक जगत में संचार की बढ़ती हुई सुविधाओं के कारण उपयुक्त स्थानीय एकत्व में कुछ सीमा तक स्थिरता आ गई है। यह बात हम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रविष्ट प्रबल शहरी प्रतिमानों में देख सकते हैं, किंतु संचार का विस्तार स्वयं एक अधिक बड़े किंतु फिर भी प्रादेशिक समुदाय की एक दशा है। समुदाय की धारणा का महत्व बहुत कुछ इस बात में है कि वह सामाजिक संलग्नता और भौगोलिक क्षेत्र के मध्यवर्ती संबंध पर बल देता है। यह संबंध एक एस्किमो गांव, सीमा पर के नगर अथवा फ्रेंच क्यूबेक के अर्ध पृथक यानी सेमी आइसोलेटेड समुदायों जैसे उदाहरणों से अस्पष्ट हो जाता है। सभ्यता के कारण क्षेत्रीय आवास और सामाजिक संबंधों में आज चाहे जो भी परिवर्तन दृष्टिगत होते हों, फिर भी सामाजिक वर्गों के प्रादुर्भाव के रूप में स्थानीय क्षेत्र के आधारभूत लक्षण की श्रेष्ठता अभी लुप्त नहीं हुई है। दूसरा, सामुदायिक भावना। आज निश्चित स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सामाजिक संलग्नता का अभाव है, जिसके कारण उन्हें एक समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती, किंतु यह बात आदिवासी समुदायों में कभी भी विद्यमान न थी। उदाहरण के लिए, एक बड़े नगर के वार्ड या जिला के निवासियों में परस्पर पर्याप्त संपर्कों का अभाव, सामान्य हितों का अभाव हो सकता है, जिनके कारण आवास क्षेत्र में निवासियों का चेतन तादात्म्य में होता है। ऐसे पड़ोस को समुदाय नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक साथ संबंधित होने की भावना नहीं होती, अर्थात उसमें सामुदायिक भावना का अभाव होता है। आगे चलकर हम सामुदायिक भावना के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करेंगे। यहाँ केवल इस बात पर जोर देना पर्याप्त है कि यद्यपि स्थानीय क्षेत्र एक आवश्यक दशा है, किंतु समुदाय के निर्माण के लिए वह पर्याप्त नहीं है। पुनश्च समुदाय एक सामान्य जीवन का क्षेत्र है, उसमें सामान्य जीवन तो होगा ही, साथ ही एक जीवन पद्धति तथा सामान्य भूमि में सहभागी होने का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उदाहरण एवं सीमावर्ती समुदाय। अब यह समझना सरल है कि एक छोटा शहर, नगर, एक विशाल राष्ट्र या आदिवासी कबीला कभी समुदाय है, सभी समुदाय है। इन सब के सदस्यों का संपूर्ण जीवन अपने समूहों में व्यतीत होता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य जीवन होता है, परंतु आधुनिक जगत में समुदायों की मध्यवर्ती सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं, और विश्व में अनेक सीमावर्ती उदाहरण मिलते हैं। नीचे ऐसे समुदायों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिनमें सीमा रेखा खींचना एक कठिन प्रश्न है, यद्यपि उसका अधिक महत्व नहीं है। पहला, क्या एक विहार यानी मोनेस्ट्री, आश्रम यानी कॉन्वेंट अथवा बंदीगृह को हम अपने अर्थ में समुदाय कह सकते हैं? ये प्रादेशिक आधार पर बने हैं और वास्तव में सामाजिक जीवन के क्षेत्र हैं, किंतु बहुत से लोग इन्हें समुदाय का गौरव नहीं देंगे, क्योंकि इनके निवासियों के कार्यकलापों का क्षेत्र सीमित है, किंतु मानवीय कार्यकलाप तो सदैव समुदाय की प्रकृति के अनुरूप परिमित होते हैं। हमारी दृष्टि में उपयुक्त प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक होना चाहिए। दूसरा, विशाल अमेरिकी नगरों के मध्य ऐसे समूहों को जो अन्य देशों से आकर वहां बस गए हैं तथा जो अपनी भाषा बोलते हैं और अपनी प्रथाओं को मानते हैं, क्या समुदाय कह सकेंगे? ऐसे समूह स्पष्टतः समुदाय की भी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और अमेरिकी जीवन में इनकी पुनरावृत्ति प्रणाली का विश्लेषण प्रायः अनेक समाजशास्त्रियों ने किया है। तीसरा, क्या एक सामाजिक जाति को जिसके सदस्य अपने अन्य साथी नागरिकों को अधिक घनिष्ठ सामाजिक संबंधों से बहिष्कृत करते हैं, हम समुदाय कह सकेंगे? यहां ऊपर दी गई परिभाषाओं का ध्यान रखते हुए हमें नकारात्मक उत्तर अधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि सामुदायिक समूह का एक अपना विशिष्ट निवास स्थान अवश्य होना चाहिए। सामाजिक जाति में निश्चित ही सामाजिक संलग्नता होती है, किंतु उसमें समुदाय के लिए अपेक्षित प्रादेशिक आधार का अभाव रहता है। सभ्यता का प्रसार और विश्व समुदाय। पूर्णतया आत्मनिर्भर समुदाय तो केवल आदिकालीन संसार में मिल सकते हैं। आधुनिक संचार में आत्मनिर्भरता के अत्यंत निकट पहुंचने का प्रयत्न विशाल राष्ट्रीय समुदाय में देखा जा सकता है, जो एक स्वतंत्र राज्य की सीमाओं में सीमित होता है। यह बात विशेषकर इसलिए और संभव हो सकी है कि राज्य में संपूर्ण जीवन का समन्वय कर दिया है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जर्मनी अथवा सोवियत रूस ने अधिकांश दूसरे राष्ट्रों के विपरीत एक नए प्रकार की आर्थिक प्रणाली स्थापित की है, किंतु न तो कभी नाजी जर्मनी आत्मनिर्भर था और न वर्तमान रूस को ही पूर्णतया आत्मनिर्भर माना जा सकता है। इसका प्रमाण यह है कि इन देशों में अमेरिका के विशाल आकार के यंत्रों का आयात किया जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि आधुनिक सभ्यता ऐसी शक्तियों को जन्म देती है जो छोटे और बड़े समुदायों की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर देती है। इन शक्तियों में कुछ प्राविधिक हैं, जैसे परिवहन और संचार के साधनों में उन्नति, कुछ आर्थिक हैं, जैसे औद्योगिक उत्पादन की नवीन प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक विनिमय के विस्तृत क्षेत्रों और बाजारों की मांग, कुछ शक्तियां सांस्कृतिक भी हैं, क्योंकि एक देश के विचार, कला तथा विज्ञान, विचारधारा और राजनीति से उत्पन्न अस्थायी रुकावटों के होते हुए भी वे सभ्यता के प्रसार के साथ दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। शक्तियों के सामने राष्ट्रीय रहस्य, चाहे वे अनुसंबंधी हो अथवा अन्य प्रकार के, अस्थायी रूप में नहीं टिक पाते। वैंडल विल्की की एक संसार की कल्पना इधर कई शताब्दियों से सचमुच निर्मित हो रही है। हम धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था तक आ गए हैं जहां एक पूर्णतः आत्मनिर्भर समुदाय किसी मात्रा में केवल तभी मिल सकता है जब समुदाय की सीमाएं समस्त विश्व तक फैली हों। समूचे विश्व में राजनीतिक अभिकरणों को विकसित करने में मनुष्य के वर्तमान प्रयत्न सभ्यता के प्रसार की प्रवृत्ति के अनुकूल ही हैं। हमारे मत में जो लोग इस प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रयत्न करते हैं, वे स्वयं विस्तारशील समुदाय की यथार्थताओं से आंख मूंद लेते हैं। बड़े और छोटे समुदाय, हम राष्ट्र और प्रायः विश्व तक समुदाय की सीमाओं के ऐतिहासिक विस्तार का उल्लेख कर चुके हैं, फिर भी वर्तमान जगत में अंशतः ही सही छोटे समुदाय भी मौजूद हैं। राष्ट्र या विश्व राज्य की उपस्थिति से गांव अथवा पड़ोस समाप्त नहीं हो जाते। हाँ, उनकी यानी गांव और पड़ोस की प्रकृति में परिवर्तन अवश्य आ जाता है। सभ्य प्राणी होने के नाते हमारे लिए छोटे और दोनों ही प्रकार के क्षेत्र आवश्यक हैं। बड़े समुदाय में हमें अवसर, स्थिरता, अर्थव्यवस्था और एक अधिक संपन्न एवं विविध संस्कृति की निरंतर प्रेरणा मिलती है। अपेक्षाकृत छोटे समुदाय में हमें जीवन के निकटतर एवं घनिष्ठ संतुष्टियों की प्राप्ति होती है। बड़े समुदाय में शांति और सुरक्षा, देशभक्ति और कभी कभी युद्ध भी तथा मोटर गाड़ियां और रेडियो उपलब्ध होते हैं। छोटे समुदाय में मित्र और मैत्री, गपशप और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा, स्थानीय गौरव और आवास उपलब्ध होते हैं। संपूर्ण जीवन प्रक्रिया के लिए दोनों ही अनिवार्य हैं। समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्तिगत सदस्य के लिए उसके भीतर अपना संपूर्ण जीवन बिता देने की संभावना निहित है। हमने यह भी दर्शाया है कि एक समुदाय के लिए एक आत्मनिर्भर होना आवश्यक नहीं है, और वास्तव में जैसे जैसे सभ्यता सभ्यता अधिक आत्मनिर्भर होती जाती है, समुदाय की आत्मनिर्भरता में कमी आती जाती है। इसके अतिरिक्त हमने समुदाय के दो आधारों की भी चर्चा की, एक भूप्रदेश यानी टेरिटरी का होना और दूसरा सामुदायिक भावना यानी कम्युनिटी सेंटीमेंट। अब जनसंख्या के संकेंद्रण के रूप में समुदाय के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि हम जनसंख्या के किसी मानचित्र का अध्ययन करें, फिर चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का हो अथवा संपूर्ण संसार का हो, तो हमें कुछ विचित्र रचनाएं देखनी पड़ेंगी। अनियमित जनसंख्याओं अथवा बिखरी हुई बस्ती स्पष्ट होती है और सामान्यतः अत्यधिक घनी बसी हुई आबादियां अपने किनारे के बिखरी हुई आबादियों में प्रकट होने लगती है। जनसंख्या के घनत्व के मानचित्रों में निश्चय ही समुदाय के विभिन्न विस्तारों और प्रकारों को देखा जा सकता है। पहला, जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं। कुछ अंश में जनसंख्या के अधिक घने बसे क्षेत्र पृथ्वी के ऐसे क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं जिनकी कुछ प्राकृतिक भौगोलिक दशाएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं, किंतु ऐसा सदैव नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि विस्तृत घास के मैदान यानी प्रेरी, यह भौगोलिक दृष्टि से एक आकस्मिक बात मालूम पड़ती है कि वहां पर लोगों की बस्तियां केवल छिटपुट हों, कहीं गांव और कहीं एक छोटा सा कस्बा। जब हम भूमि की दशाओं की भिन्नताओं अथवा अन्य प्राकृतिक साधनों और संचारों के लिए प्राकृतिक सुविधाओं अथवा जीवन के लिए सुविधाओं की भिन्नताओं का विचार करते हैं, तो हमें भौगोलिक दशाओं और मानव बस्तियों के बीच में कोई संगत सहसंबंध देखने को नहीं मिलता। दूसरी ओर कुछ स्थानों पर बसी हुई जनसंख्या की बस्तियां स्पष्ट रूप से प्राकृतिक दृष्टि से निर्धारित लाभों के अनुकूल देखी जा सकती हैं। इसे हम अधिकतम महानगरों की स्थिति से स्पष्ट देख सकते हैं, अथवा ऐसी ही बात उत्तरी अमेरिका और यूक्रेन की बहुत अधिक गल्ला पैदा करने वाली ग्रामीण आदिवासियों में देखी जा सकती है। किंतु इन उदाहरणों में आबादियों की स्थितियों अथवा स्थान विशेष की प्रकृति लाभों को हम केवल सभ्यता के विद्यमान अवस्था के प्रकाश में समझ सकते हैं। अतएव शहरी केंद्र की जनसंख्या का घनत्व अथवा नदियों के द्वारा क्षेत्रों में घने आबादियों की व्यवस्था ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर की जा सकती है, जिनमें मात्र ऐतिहासिक स्थितियों तथा सामाजिक और तकनीकी विकास के स्तरों का भी समावेश होता है। यदि हम जनसंख्या के अपेक्षिक घनत्वों का अध्ययन करें, तो इस प्रकार के विचारों का हमारे लिए बहुत अधिक महत्व है। परंतु यहाँ पर तो हम स्वयं समुदाय की जनसंख्या के महत्व पर विचार करना चाहते हैं। दूसरा, संकेंद्रण अथवा विशिष्टीकरण तथा विशिष्टीकरण। कुछ प्रदेशों में बिखरे हुए आवासों के ऐसे क्षेत्र हैं जिनके कोई स्पष्ट केंद्र नहीं है। ऐसे अनियमित समुदायों में सामुदायिक श्रम विभाजन नहीं है। इस कारण इनमें आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों के केंद्र भी नहीं है, परंतु अनेक समुदायों में सामाजिक कार्यकलापों के लिए कुछ केंद्र होते हैं, विशेषकर जहां कहीं भी मनुष्य की आबादी एक ऐसे क्षेत्र में सीमित होती है जहां भूमि केवल उस आबादी की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए ही पर्याप्त होती है। वहां चाहे प्रारंभिक रूप में और चाहे विकसित रूप में एक सामुदायिक केंद्र विद्यमान होता है, क्योंकि ऐसी ही दशा में विनिमय विशिष्टीकरण हो सकता है। यह केंद्र एक सामान्य मिलन स्थान प्रदान करता है जैसे कि कस्बे का बाजार अथवा गांव का सामान्य उपभोक्ता भंडार। यदि समुदाय छोटा है तो वह केंद्र अविविधीकृत होता है, और यदि समुदाय बड़ा है तो केंद्र अधिक विस्तृत और विभेदीकृत होता है। एक विशाल नगर की माफ करिए, इसे फिर से सुनिए। एक विशाल नगर के अस्पंदित जीवन का एक प्रबल केंद्र हो सकता है, किंतु साथ ही उसमें व्यापार, वित्त, खुदरा व्यापार, मनोरंजन और ऐसे ही बातों के लिए विशिष्ट केंद्र अलग से होते हैं। केंद्र स्वयं समुदाय के सापेक्ष होते हैं। एक बाजार कस्बे के समुदाय का केंद्र हो सकता है, किंतु स्वयं कस्बा एक क्षेत्र का केंद्र अथवा एक महानगर का देश का केंद्र हो सकता है। बाह्य रूप से केंद्र उपांत के भिन्न होता है, क्योंकि उपांत अथवा समुदाय एक बाहरी भाग वह स्थान होता है जिसकी और संचार के मार्ग नहीं जाते। वास्तव में समुदाय के भीतर संचार के मार्गों का संकेंद्रण होता है। समुदाय के बिना, संचार के बिना कोई समुदाय नहीं होता, और एक समुदाय का जीवन ऐसे स्थलों के चारों ओर घूमता रहता है जहां संचार सबसे अधिक घना होता है। समुदाय और संचार व्यवस्था। समुदाय और संचार व्यवस्था के संबंध को कई तरीकों से दिखाया जा सकता है। प्रायः एक समुदाय यातायात के अंतिम स्थान पर विकसित हो जाता है जहां अनुकूल भौगोलिक दशाओं का आर्थिक और तकनीकी लाभों से मेल हो जाता है, ताकि एक बस्ती का निर्माण हो सके। इस प्रकार संसार भर में अनेक नगर भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों जैसे नदियों के मुहानों, प्राकृतिक बंदरगाहों अथवा अनुकूल स्थिति वाले द्वीपों पर विकसित हो गए हैं। कई शताब्दियों तक यूरोपीय नगरों का विकास न केवल नदी तटों या बंदरगाहों पर हुआ, अपितु जहां कहीं भी मनुष्य के यातायात अथवा संचार के मुख्य मार्गों का मिलान होता था अथवा जहां पर एक दूसरे को काट कर जाते थे, वहां ही नगरों का विकास हुआ था। यूरोप में रेलों के विकास से और विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलों के जंक्शन समुदाय विस्तार के प्रमुख स्थान बन गए हैं। आजकल हवाई केंद्रों का वैसा ही प्रभाव है, किंतु इसका रेल अथवा सड़कों के केंद्रों की तुलना में कम विस्तृत प्रभाव है। यातायात के विश्राम स्थलों पर जिस प्रकार के समुदाय विकसित होते हैं, उनमें गांव से लेकर विशाल महानगर तक सम्मिलित होते हैं, और ऐसी स्थिति की प्राकृतिक सुविधाओं और सामुदायिक केंद्र द्वारा क्षेत्र की आर्थिक साधनों की सेवा, तकनीकी दक्षताओं की अवस्था और सभ्यता के सामान्य स्तर के अनुरूप होता है। विशाल समुदाय अंतिम व आरंभिक बिंदु दोनों होता है, परंतु भौगोलिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका अपना एक गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन का गुण होता है। किसी सड़क के आरंभ की अपेक्षा उसका अंत ही वास्तव में बहुधा वह तत्व है जो किसी प्राकृतिक बाधा के कारण बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बन जाता है, जैसे कि किसी समुद्र अथवा झील अथवा पहाड़ों की एक श्रृंखला, एक जंगल अथवा रेगिस्तान का कोई किनारे का स्थान। अतएव विशाल शहरी समुदायों के पीछे अपने अंतर प्रदेश होते हैं, और इनके पीछे जो क्षेत्र होते हैं उन पर वे कुछ मात्रा में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं, संप्रदाय के साधनों और जनसंख्या के लिए निर्भर रहते हैं। इन विशाल नगरों में यह केवल व्यापार और वित्त की सुविधाओं के कारण आकर्षित नहीं होते, परंतु सांस्कृतिक उत्थान के अवसरों और जीवन यापन और समय के व्यय करने के अधिक विस्तृत और आकर्षक रूपों के कारण आकर्षित होते हैं। जब तक एक विशाल नगर असामान्य रूप से किसी केंद्रीय आर्थिक कार्य के चारों ओर विशेषकृत न हो, जैसे कि खनन अथवा कोई अकेला उद्योग, तो उसे एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है जहां उसके प्राचीन और नवीन निवासियों के लिए अनेक प्रकार की सभ्यताएं मिल सकती हैं, और जो सांस्कृतिक केंद्र होने के अतिरिक्त मानव समाज का भी एक केंद्र होता है। हमारा पड़ोस एक सरलतम समुदाय है। परिवार के बाद स्थानीय एकता के कुछ चेतना से युक्त यह समुदाय सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि हम ग्रामीण पड़ोस का अध्ययन करें तो उसमें विभिन्न कारक देखे जा सकते हैं। उसकी एकता की अंतः मिश्रित स्थितियां, जैसे कि भू रचना और मूल वनस्पति, राष्ट्रीयता के संबंध, धार्मिक प्रयोजन और एक सामान्य वास स्थान यानी लोकलिटी, निष्क्रमण और आर्थिक और सामाजिक प्रयोजन आदि, इन कारकों की सापेक्षिक महत्ता समुदाय के एक बार बन जाने के बाद निरंतर बदलती रहती है। कुछ कारक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसा कि कभी कभी शैक्षणिक और धार्मिक कारकों का कुछ मध्य पश्चिमी ग्रामीण समूह में महत्व देखा गया था, और बंधुता की चेतना जैसे कुछ अन्य कारक दुर्बल पड़ जाते हैं। जनसंख्या का स्थानांतरण, संचार और यातायात के परिवर्तन, नेतृत्व के परिवर्तन, बढ़ते अथवा घटते हुए आर्थिक अवसर और बाहरी समाजों के नए प्रभावों का संघात, ये तथा अन्य ऐसी ही शक्तियां कार्यरत रहती हैं। समुदाय का एक प्रकार राष्ट्र। राष्ट्र के सामुदायिक आधार। हमारी वर्तमान सभ्यता में राष्ट्र विशालतम प्रभावकारी समूह है। इससे हमारा अर्थ यह है कि राष्ट्र एक ऐसा विशालतम समूह है जिसमें संपूर्ण सुदृढ़ता की भावना व्याप्त है। राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत परे तक फैली हुई रुचियां होती हैं, जिनमें शायद मनुष्य के अपने कल्याण के अत्यंत महत्वपूर्ण हित भी सम्मिलित होते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अनेक कम विस्तृत प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संघ भी होते हैं, किंतु अभी तक किसी प्रभावकारी मात्रा में एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विकास नहीं हो पाया है। यह बात तब अधिक स्पष्ट हो जाएगी जब हम समस्त समुदायों के मूलभूत आधारों के प्रति अपना ध्यान देंगे। अन्य समुदायों के भांति राष्ट्र भी स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना पर आधारित होता है। चाहे किसी राष्ट्र की वैधानिक सत्ता हो अथवा वह एक जाति की आशाओं और आकांक्षाओं में ही विद्यमान हो, उसका अपना कुछ भौगोलिक क्षेत्र अवश्य होता है। किंतु एक राष्ट्रीय क्षेत्र और दूसरे राष्ट्रीय क्षेत्र के पृथक करने वाली सीमाओं को उतनी आसानी से स्पष्ट नहीं किया जा सकता जितना कि संसार के राजनीतिक मानचित्र द्वारा दिखाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वार्सेल्स में नए यूरोप की रचना करने वालों के सामने जो भयानक समस्या उठ खड़ी हुई थी, उसका दृष्टांत आज हमारी उक्त कथन की सत्यता प्रमाणित कर देगा। अधिकतर इन कठिनाइयों की जटिलता निश्चित ही महान शक्तियों के हितों के संघर्ष का परिणाम है, परंतु पूर्वी यूरोप और भारत जैसे संसार के क्षेत्रों में विशेषकर राष्ट्रीय भावना से संबंधित राष्ट्रीय क्षेत्रों की उचित और सही सही सीमाओं के निर्धारण का प्रश्न अभी भी बना हुआ है। जहां कहीं मनुष्य साथ साथ रहते हैं, वहां किसी न किसी मात्रा में समुदाय का अस्तित्व बना रहता है।